पृष्ठ संख्या 57, पंचम अध्याय, मध्य युग का दर्शन। 8वीं शताब्दी के अंत से लेकर 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक का दीर्घकाल मध्य युग कहलाता है। अगस्टाइन के बाद से लेकर एरिजेना के पहले तक का समय अर्थात 430 से लेकर 810 तक का समय अंधकारमय युग कहलाता है। एरिजेना मध्य युग के प्रथम गणनीय दार्शनिक हैं। इनके बाद फिर लगभग 2 शताब्दियों तक अंधकार छाया रहा, जिसे संत एंसेल्म ने अपनी ज्ञान ज्योति से दूर किया। मध्य युग को शास्त्रीय युग या स्कॉलस्टिसिज्म भी कहते हैं। अंधकारमय युग में प्राचीन विचारधारा को बचाए रखकर उसे मध्य युग की ओर बहा देने के कार्य में डायोनीसियस और बोथियस ने पर्याप्त योग दिया। अगस्टाइन की मृत्यु के कुछ वर्षों बाद ही रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। रोम का अंतिम सम्राट गद्दी से उतार दिया गया और बर्बर जर्मन विजेताओं का राज्य स्थापित हो गया। रोम के पतन के बाद अराजकता को रोकने के लिए और अनुशासन एवं न्याय की स्थापना के लिए चर्च ही एकमात्र साधन थी। प्राचीन विचारधारा सभ्यता तथा ईसाई परंपरा का केंद्र चर्च ही था। ज्ञान के विकास और प्रसार का कार्य भी मुख्यतः वही करती थी। तर्कशास्त्र के अध्ययन का प्रचार भी उसी ने किया। शिक्षा के नियम भी उसी ने बनाए और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा विकास में योग दिया। धर्म संस्था होने के कारण राज्य भी उसका आदर करता था। बर्बर जर्मन विजेताओं ने भी चर्च को नहीं छेड़ा। अराजकता को रोककर अनुशासन स्थापित करना, शिक्षा का प्रचार करना, ज्ञान और धर्म की ज्योत फैलाना, व्यक्ति की मर्यादा की रक्षा करना और सभ्यता की परंपरा को अक्षुण रखना, ये सब कार्य चर्च के ही थे और उसने इन्हें निभाया भी। शीघ्र ही चर्च जर्मन विजेताओं को जीतने के कार्य में जुट गई और अल्पकाल में ही उसने उन पर सांस्कृतिक और धार्मिक विजय प्राप्त कर ली। धीरे धीरे राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी चर्च की प्रभुता फैलने लगी। चर्च का केंद्र रोम में था, किंतु शाखाएं लगभग सारे यूरोप में फैल रही थीं। चर्च का संगठन उत्तम था और पोप का अनुशासन निर्विवाद स्वीकार किया जाता था। धीरे धीरे चर्च ने सारे यूरोप को अपनी छत्र छाया में ले लिया और राजनीति के क्षेत्र में भी प्राचीन रोमन साम्राज्य का स्थान ग्रहण कर लिया। पृष्ठ संख्या 58, पोप सम्राटों के भी सम्राट हो गए और राजाओं तथा सामंतों पर एक छत्र शासन करने लगे। चर्च में रूढ़ियां बन गई जिनका अतिक्रमण दंडनीय था। न्याय और दंड का अंतिम अधिकार भी चर्च ने ले लिया। और उसकी सत्ता सार्वभौम हो गई। संत अगस्टाइन का दिव्य नगर का स्वप्न मध्य युग में साकार हुआ। मध्य युग में दर्शन को भी धर्म का दास बनना पड़ा। चर्च की मान्यताओं के आगे दर्शन को भी नतमस्तक होना पड़ा। मध्य युग के दार्शनिक प्रायः कैथोलिक पादरी ही थे और उनका मुख्य उद्देश्य धार्मिक सिद्धांतों को तर्क द्वारा पुष्ट करना था। धार्मिक विश्वास या श्रद्धा मुख्य थी, तर्क गौण था। तत्व की प्राप्ति तर्क द्वारा नहीं हो सकती, सत्य दिव्य धार्मिक अनुभूति द्वारा प्रकट होता है या डिवाइन रिवेलेशन। ईसाई धर्म के सिद्धांतों के रूप में ईश्वर ने इसे प्रकट कर दिया है। अतः सत्य ज्ञान के लिए ईसाई धर्म की श्रुति बाइबिल में श्रद्धा अनिवार्य है। तर्क इसकी पुष्टि करने के लिए है, विरोध करने के लिए नहीं। दर्शन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा। स्वतंत्र विचारों का गला घोटने के लिए चर्च का सुदृढ़ पंजा सदा जागरूक था। मध्य युग के दार्शनिक विचार उन पर कटे कबूतरों के समान थे जिनके ज्ञान पंख धर्म ने काट दिए थे और चर्च की चहार दीवारी में छोड़ रखा था। वे चर्च के भीतर फड़फड़ा सकते थे, किंतु उन्मुक्त आकाश में उड़ना उनकी सामर्थ्य के बाहर था। प्रत्येक दार्शनिक को अपने विचारों को चर्च के सांचे में बैठाना पड़ता था। ग्रीक भाषा के जानकार बहुत कम रह गए थे, प्रायः लैटिन अनुवाद ही पढ़े जाते थे। ग्रीक दर्शन के वे ही विचार जीवित रह गए जो पादरियों के दर्शन में छन कर आ गए थे। चर्च के अंधविश्वासों से जरा भी इधर उधर होना दंडनीय अपराध था। एक पादरी को जो व्याकरण पढ़ाने लग गए थे, पोप ने तुरंत पत्र लिखा, एक सूचना हमें मिली है जिसको कहते हैं हुए भी हमें लज्जा आती है कि तुम अपने मित्रों को व्याकरण समझाते हो। इससे हमें बड़ा क्षोभ और बड़ी ग्लानि हुई है तथा तुम्हारे विषय में जो हमारी पहले राय थी वह अब सिर धुन रही है। तुम्हारा वह मुख अब ईश्वर और ईसा मसीह का गुणगान नहीं करता। स्पष्ट है कि मध्य युग का दर्शन ईसाई धर्म का दर्शन है। धार्मिक अंधविश्वासों का विवेचन इस ग्रंथ के क्षेत्र के बाहर है। हम मुख्य रूप से दार्शनिक विचारों की ही चर्चा करेंगे। अगले दार्शनिक हैं जॉन स्कॉटस एरिजेना। सन 810 से 880 ईस्वी तक, पृष्ठ संख्या 59। एरिजेना मध्य युग के प्रथम गणनीय दार्शनिक हैं। वे आयरलैंड के निवासी थे और बड़े प्रतिभाशाली थे। लेटिन के अतिरिक्त वे ग्रीक भाषा भी जानते थे। उन पर प्लेटो और प्लोटाइनस का अत्यंत प्रभाव पड़ा है। उन्होंने प्लोटाइनस के विचारों का ईसाई धर्म के सिद्धांतों के साथ सामंजस्य करने का प्रयास किया है। प्लोटाइनस के ज्वलंत अद्वैतवाद पर उन्होंने ईसाई धर्म के द्वैतवाद का पतला सा आवरण डाला है। प्लोटाइनस का अद्वैत परम तत्व विश्वात्मा, जीवात्मा और जड़ जगत के रूपों में अभिव्यक्त होता है। इस अभिव्यक्ति के सिद्धांत को एरिजेना ने स्वीकार किया। भेद इतना ही है कि प्लोटाइनस के अनुसार अभिव्यक्ति विवर्त मात्र है, किंतु एरिजेना के अनुसार वह परिणाम रूप है। एरिजेना का मत इस प्रकार है, ईश्वर निर्गुण और सगुण दोनों है। मुक्त जीवों के लिए निर्गुण और बुद्ध जीवों के लिए सगुण। वस्तुतः निर्गुण और अनिर्वचनीय है। मानवीय बुद्धि उनका पूर्ण ग्रहण नहीं कर सकती। वे पर हैं, वे न सृष्टा हैं न सृष्टि, या नाइदर क्रिएटर नॉर क्रिएटेड, किंतु उनके इस रूप का अनुभव मुक्त जीवों को ही होता है, हमें नहीं। हमारे लिए तो वे परम कारुणिक परम पिता फादर हैं, अशेष कल्याण गुण संपन्न हैं। वे स्वयंभू और सृष्टा अर्थात अनक्रिएटेड क्रिएटर हैं, किंतु पिता के साथ पुत्र की सत्ता आवश्यक है। पुत्र के कारण ही पिता यह नाम सार्थक होता है। यह पुत्र सन नित्य ज्ञान स्वरूप या इटर्नल लॉगस है और पिता के भीतर स्थित है। तब पिता अपने पुत्र को बाहर उत्पन्न कर देते हैं, तब सृष्टि का कार्य प्रारंभ हो जाता है। यह उत्पन्न पुत्र ही शुद्ध आत्मा है। यह विश्वात्मा या वर्ल्ड सोल है और अन्य जीवात्माएं तथा जड़ जगत इसी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यह पुत्र पिता द्वारा सृष्ट है और स्वयं चित एवं अचित जगत का सृष्टा है। अतः यह सृष्ट और सृष्टा या बोथ क्रिएटेड एंड क्रिएटर दोनों है। जीव आत्माओं और जड़ पदार्थों का यह जगत केवल सृष्ट क्रिएटेड ओनली है। विश्व आत्मा का इस दिक्कालात्मक जगत में प्राकट ईसा मसीह या क्रिस्ट के रूप में होता है। वे जीवात्माओं को परम पिता से मिलाने के लिए अवतरित होते हैं। चर्च उनका शरीर है, अतः चर्च मानव को ईश्वर से मिलाने की श्रृंखला है। ईश्वर ही सब कुछ है और सब में उन्हीं की सत्ता है। कैथोलिक मत की त्रय या त्रिपुटी अर्थात ट्रिनिटी का जिसके पिता पुत्र और जीव या होली घोस्ट, ये तीन अंग हैं। पूर्वोत्तर वर्णन एरिजेना ने प्लोटाइनस से प्रभावित होकर किया। पृष्ठ संख्या 60। एरिजेना में ग्रीक दर्शन की सामान्य या यूनिवर्सल और व्यक्ति या पार्टिकुलर की समस्या पुनः प्रकट हुई। असली ज्वलंत सत्ता विज्ञान स्वरूप सामान्य की है और व्यक्तियों का यह जड़ चेतन रूप विश्व इस ज्वलंत सत्ता का क्षीण प्रकाश है। एरिजेना ने प्लेटो और प्लोटाइनस का अनुसरण करके सामान्यों की वास्तविक सत्ता स्वीकार की। अतः उनका मत सामान्यवाद या अतिवस्तुवाद या ट्रांसेंडेंटल रियलिज्म कहलाता है। इसके विपरीत अन्य लोगों ने सामान्यों की वास्तविक सत्ता स्वीकार न करके उनको केवल बुद्ध की कल्पना माना। वे नाम मात्र हैं, वास्तविक पदार्थ नहीं। अतः इस मत का नाम व्यक्तिवाद या नामवाद या नॉमिनलिज्म पड़ा। आगे चलकर कुछ विद्वानों ने इन दोनों का समन्वय अरिस्टोटल से प्रभावित होकर किया। सामान्य वस्तु सत्य तो है, किंतु उनकी अभिव्यक्ति व्यक्तियों में ही होती है, व्यक्तियों से भिन्न सामान्यों की सत्ता नहीं। वह मत सामान्य विशिष्ट व्यक्तिवाद या अंतर्वस्तुवाद इमानेंट रियलिज्म कहलाता है। एरिजेना के बाद लगभग 2 शताब्दियों तक फिर अंधकार छाया रहा, जिसको दूर करने का श्रेय संत एंसेल्म को है। अगले दार्शनिक हैं संत एंसेल्म, सन 1035 से 1109, केंटरबरी के बड़े पादरी या आर्च बिशप ऑफ केंटरबरी। संत एंसेल्म बहुत प्रतिभावान और चरित्रवान व्यक्ति थे। धार्मिक मान्यताओं में उनका कट्टर विश्वास था। श्रद्धा ही ज्ञान की जननी है। हम ज्ञान इसलिए नहीं प्राप्त करते कि उसको पाकर फिर श्रद्धालु बने। ज्ञानी बनने के लिए पहले श्रद्धालु बनना आवश्यक है। जिस अंधे व्यक्ति ने कभी प्रकाश नहीं देखा हो, उसे प्रकाश का ज्ञान कैसे हो सकता है? श्रद्धालु बनकर धार्मिक मान्यताओं पर विचार करना चाहिए। यदि उनका अर्थ समझ में आ जाए तो ईश्वर की कृपा समझनी चाहिए। यदि नहीं समझ में आए तो ईश्वर की इच्छा समझकर संतोष करना चाहिए। मानवीय बुद्धि की समझ में न आने से ही श्रुति के दिव्य ज्ञान की अवहेलना करना उचित नहीं। एरिजेना के समान एंसेल्म भी सामान्यवादी हैं। इन्होंने नामवादी रेसेलिनस का प्रबल खंडन किया है। सामान्यों या विज्ञानों की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, या ट्रांसेंडेंटल रियलिज्म, और चिदचिद्रूप विश्व की सत्ता इसीलिए है कि यह विश्व इन विज्ञानों की अभिव्यक्ति है। पृष्ठ संख्या 61। ये सामान्य या विज्ञान जीवों और जड़ पदार्थों की सृष्टि से पूर्व परमपिता के दिव्य विज्ञान रूप में रहते हैं। हमारे विज्ञान ईश्वर के उच्चरित शब्द या स्पोकन वर्ड हैं। दिव्य विज्ञान ईश्वर के अनुच्चरित शब्द अर्थात अनस्पोकन वर्ड हैं। उच्चारण के पूर्व भी जैसे शब्द की सत्ता वक्ता में अंतर्निहित होती है, वैसे ही सृष्टि के पूर्व भी ये दिव्य विज्ञान ईश्वर में अंतर्निहित है। ये दिव्य विज्ञान पुत्र है जो पिता में विद्यमान है। यह नित्य विज्ञान स्वरूप पुत्र ही सृष्टि का कारण और हमारे विज्ञानों का मूल रूप अर्थात आर्चेटाइप है। इस प्रकार पिता पुत्र और जीव की त्रिपुटी में एक ही ईश्वर का अस्तित्व और ज्ञान विद्यमान है। पिता पुत्र और जीव अपने स्वरूप का भेद या इंडिविजुअलिटी रखते हुए भी ईश्वरीय सत्ता और ज्ञान के उपभोक्ता हैं। सामान्यवाद, व्यक्तिवाद और सामान्य विशिष्ट व्यक्तिवाद की ग्रीक समस्या, जिसको एरिजेना ने ईसाई धर्म में लापटका, मध्य युग की दार्शनिक विचारधारा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। इसका महत्व दो कारणों से बढ़ गया। एक तो ईसाई धर्म की पुनीत त्रिपुटी का अर्थ समझने के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा, और दूसरे चर्च की प्रभुता की सिद्धि पर इसका प्रभाव पड़ने लगा। इन दोनों कारणों को समझ लेना चाहिए। ईसाई धर्म के अनुसार पिता, पुत्र और जीवात्मा की त्रिपुटी में एक ही ईश्वर की दिव्य सत्ता और दिव्य ज्ञान है। तीनों अपना अलग अलग व्यक्तित्व रखते हुए भी एक ही ज्योति से आलोकित हैं, सामान्य नित्य हैं और पुत्र के रूप में पिता में विद्यमान हैं। पिता पुत्र की सहायता से ही सृष्टि करता है। हमारे सामान्य इन दिव्य और नित्य सामान्यों के प्रतिरूप हैं। अतः सामान्यों को नित्य और वास्तविक मानना चर्च के लिए आवश्यक हो गया। पुनश्च त्रिपुटी के तीनों अंगों में ईश्वरत्व रूपी सामान्य विद्यमान है। यदि सामान्य बुद्धि की कल्पना मात्र हो तो ईश्वरत्व भी कल्पना मात्र हो जाएगा, और तब या तो त्रिपुटी के तीनों अंगों में से कोई भी ईश्वर नहीं हो सकेगा, या तीनों भिन्न भिन्न तीन ईश्वर बन जाएंगे। अतः चर्च के लिए सामान्यवाद का समर्थन और व्यक्तिवाद का विरोध करना अनिवार्य हो गया। इसका दूसरा कारण यह था, रोम में पोप की केंद्रीय चर्च अन्यत्र सब स्थानों में फैली हुई चर्च की शाखाओं का नियंत्रण करती थी। अन्य चर्च समुदाय व्यक्ति समुदाय था, और उन व्यक्ति रूप विभिन्न चर्चों में पोप की केंद्रीय चर्च सामान्य के समान अनुसूचित थी। यदि सामान्य को बुद्ध की कोरी कल्पना माना जाए तो केंद्रीय चर्च की अन्य चर्चों पर सत्ता भी काल्पनिक हो जाएगी। पृष्ठ संख्या 62। इस कारण से भी चर्च को सामान्यवाद का समर्थन और नामवाद का खंडन करना आवश्यक हो गया। किंतु इस सामान्यवाद की एक और ध्वनि निकलती थी जो चर्च को मान्य नहीं हो सकती थी। एरिजेना पर प्लेटो और प्लोटाइनस का प्रभाव अत्यंत स्पष्ट है। एंसेल्म पर भी कुछ पड़ा है। इस प्रभाव के कारण सामान्यवाद का झुकाव विवर्तवाद की ओर प्रतीत होता है। सामान्य ही वास्तविक सत्य बन जाता है और व्यक्तियां उस सामान्य का आभास मात्र सिद्ध होती हैं। चर्च का द्वैतवाद इसे कदापि स्वीकार नहीं कर सकता था। अतः कालांतर में प्लेटो के स्थान पर एरिस्टोटल की शरण लेकर इस सामान्यवाद को सामान्य विशिष्ट व्यक्तिवाद का रूप दिया गया है। संत एंसेल्म ने धार्मिक मान्यताओं में कट्टर विश्वास होने के कारण नामवाद का खंडन करके सामान्यवाद की पुष्टि की। एरिजेना के समान उन्होंने सामान्यवाद की सहायता से त्रिपुटी के तीनों अंगों का प्रतिपादन किया। संत एंसेल्म का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ईश्वर की सिद्धि के लिए प्रमाण प्रस्तुत करना था। उनका ईश्वर की सिद्धि के लिए सत्तामूलक तर्क या ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट, जिसे आगे चलकर आधुनिक युग के संस्थापक डेकार्ते ने अपनाया, प्रसिद्ध है। एंसेल्म के सत्तामूलक तर्क का आशय यह है, हमारी आत्मा में पूर्ण ईश्वर का विचार उत्पन्न होता है और इस विचार मात्र से ईश्वर की सत्ता सिद्ध है, क्योंकि यदि ईश्वर की सत्ता न हो तो सत्ता की कमी के कारण वे पूर्ण नहीं हो सकेंगे। अतः ईश्वर विषयक विचार मात्र से उनकी वास्तविक सत्ता सिद्ध हो जाती है। इस तर्क का खंडन एंसेल्म के समकालीन गैलीलियो ने कर दिया था, जिसे कांट ने डेकार्ते का खंडन करते समय अपनाया। गैलीलियो का खंडन इस प्रकार है, ईश्वर की पूर्णता का विचार ईश्वर की सत्ता के विचार को ही सिद्ध करता है, ईश्वर की वास्तविक सत्ता को नहीं। हमें यह विचार होता है कि ईश्वर पूर्ण है, जो पूर्ण है उसकी सत्ता अवश्य होनी चाहिए, अन्यथा वह अपूर्ण हो जाएगा। इस सत्तामूलक तर्क से केवल यही सिद्ध होता है कि यदि ईश्वर पूर्ण है तो उसकी सत्ता भी होनी चाहिए। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि पूर्ण ईश्वर की वस्तुतः सत्ता है। अगले दार्शनिक हैं एबेलार्ड। सन 1073 से 1142 सामान्य विशिष्ट व्यक्तिवाद का सूत्रपात एबेलार्ड ने किया, जिसको आगे चलकर थॉमस एक्विनस ने विकसित करके स्थिर रूप दिया। पृष्ठ संख्या 63। वस्तुतः एबेलार्ड का सिद्धांत सामान्यवाद और व्यक्तिवाद का सम्मिश्रण है। उनके अनुसार सामान्य की तात्विक सत्ता व्यक्तियों से भिन्न नहीं हो सकती, किंतु इसका यह अर्थ भी नहीं कि सामान्य केवल काल्पनिक नाम है। सामान्य उन साधारण गुणों को कहते हैं जिनकी सत्ता एक जात के सब व्यक्तियों में समान रूप से हो। ये गुण हमारी बुद्धि की कल्पना नहीं है, ये वास्तविक गुण है जो वस्तुओं में वस्तुतः रहते हैं। इनकी प्रतिकृति हमारी बुद्धि में भी रहती है। इन गुणों के मूल रूप ईश्वर के विज्ञान में रहते हैं। अतः एबेलार्ड के अनुसार सामान्यों की सत्ता तीन प्रकार की है। पहला, सांसारिक वस्तुओं के यथार्थ गुणों के मूल रूप में ईश्वर के विज्ञान में इनकी सत्ता है, या एंटे रेस। दूसरा है, सांसारिक वस्तुओं में इनके यथार्थ गुणों के रूप में इनकी सत्ता है, इन रेवस। और तीसरा है, इन गुणों की प्रतिकृति के रूप में हमारी बुद्धि में इनकी सत्ता है, अर्थात पोस्ट रेस। इस मत को कॉन्सेप्टलिज्म कहते हैं। दूसरा कार्य जो एबेलार्ड ने किया वह था तर्क का महत्व बतलाना। धर्म के सिद्धांतों को तर्क से सिद्ध करके मानना चाहिए, अंधविश्वास ठीक नहीं। संदेह पाप नहीं है, वह सच्चे दर्शन का जनक है। हाँ, संदेह साधन मात्र है, साध्य नहीं। साध्य तो सत्य है, जो संदेह करने पर ही प्राप्त होता है, अंधविश्वास से नहीं। इन सिद्धांतों का प्रभाव डेकार्ते के संदेहवाद पर पड़ा है। एबेलार्ड में धार्मिक सहिष्णुता और उदारता थी। वे अन्य धर्मों के विद्वानों, संतों और दार्शनिकों का भी आदर करते थे। ईसाई त्रिपुटी के तीनों अंगों को उन्होंने तीन तत्व न मानकर एक ही तत्व के तीन गुणों के रूप में स्वीकार किया, जिसका पादरियों ने बड़ा विरोध किया। उनकी धार्मिक उदारता से भी वे क्षुब्ध हुए। कालांतर में जब लोगों को तर्क का खून मुंह लग गया और धर्म के अंधविश्वास तर्क के प्रहारों के आगे गिरने लगे, तो चर्च ने उनका संतोषजनक समाधान न कर सकने के कारण राज्य की सहायता से एक धार्मिक न्यायालय या इंक्विसिशन स्थापित किया और ईसाई धर्म के ईश्वर के प्रति विद्रोह राजद्रोह ठहराया गया। इस विद्रोह का दंड मृत्यु दंड था। विरोधियों को जीवित जला देना। 13वीं शताब्दी के मध्य में यह संस्था सुदृढ़ हो गई थी। यूरोप में उस समय ग्रीक भाषा के जानकार खोजने पर भी नहीं मिलते थे। पृष्ठ संख्या 64। प्लेटो और एरिस्टोटल की कृतियों के जो कुछ अंश लैटिन में अनुदित हो चुके थे, उन तक ही ग्रीक दर्शन का ज्ञान सीमित था। किंतु 5वीं शताब्दी के अंत तक प्लेटो और एरिस्टोटल की बहुत सी कृतियां आर्मेनियन और फारसी भाषाओं में अनुदित हो चुकी थीं, और 8वीं शताब्दी में बगदाद पहुंचकर अरबी भाषा में भी अनुदित हो चुकी थीं। बगदाद से ये अरबी अनुवाद स्पेन में पहुंचे। ग्रीक दर्शन का प्रभाव इस्लाम पर भी काफ़ी पड़ा और कई मुसलमान विद्वानों ने प्लेटो और एरिस्टोटल के विचारों का कुरान के विचारों से सामंजस्य करने का भी प्रयत्न किया। ईसाइयों और मुसलमानों में लंबे धर्म युद्ध या क्रूसेड्स हुए। उनके कारण दोनों में संपर्क होने से एवं बाइजेंटाइन साम्राज्य या बाइजेंटाइन एम्पायर से संपर्क होने से यूरोप में ग्रीक दर्शन और ग्रीक भाषा का फिर से प्रचार हुआ, और अब ग्रीक भाषा के मौलिक ग्रंथों से ही उनके अनुवाद किए जाने लगे। इस प्रकार प्लेटो और एरिस्टोटल के शुद्ध विचारों का फिर प्रचार हुआ और ईसाई धर्म ने प्लेटो के बजाय एरिस्टोटल को अधिक आदर दिया। संत थॉमस इक्विनस पर एरिस्टोटल का बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने जिस दर्शन की प्रतिष्ठा की, वह वर्षों तक चर्च का मान्य दर्शन बना रहा। अगले दार्शनिक हैं संत थॉमस इक्विनस, 1225 ईस्वी से 1274 ईस्वी तक। इक्विनस का जन्म नेपल्स के पास एक उच्च कुल में हुआ था। वे कैथोलिक संप्रदाय की डोमिनियन शाखा के पादरी थे। उनकी प्रतिभा विलक्षण थी और उन्होंने अपना जीवन मुख्यतया अध्ययन और अध्यापन में ही बिताया। उन्होंने एरिस्टोटल की कृतियों पर विस्तृत भाष्य लिखे और स्वतंत्र ग्रंथों की भी रचना की। एक्विनस के अनुसार दर्शन और धर्म का विभाग तर्क और श्रुति के विभाग पर निर्भर है। दर्शन का साधन है तर्क और धर्म का श्रुति। तर्क की सीमाएं हैं, वह परमार्थ का ज्ञान नहीं करता, इसके लिए श्रुति ही एकमात्र प्रमाण है, किंतु फिर भी दोनों का क्षेत्र बहुधा मिल जाता है। दोनों एक दूसरे के सहायक और पूरक हो जाते हैं। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, अतः तर्क उनकी ओर संकेत तो करता ही है। श्रुति के सिद्धांत भी युक्त होने के कारण तर्क द्वारा प्रमाणित किए जा सकते हैं। यह सत्य है कि तर्क की गति सीमित होने के कारण प्राधान्य श्रुति का ही है। संत एक्विनस ने ईश्वर की सिद्धि के लिए प्रमाण भी दिए हैं। संत एंसेल्म का सत्तामूलक तर्क उन्हें नहीं जचा। गैनिलो का मत कि इससे ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं होती, किंतु सत्ता का विचार ही सिद्ध होता है, ठीक है। पृष्ठ संख्या 65। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी सविकल्प बुद्धि ईश्वर की पूर्णता का ग्रहण ही नहीं कर सकती। एक्विनस के अनुसार ईश्वर की सत्ता के लिए सर्वोत्तम प्रमाण एरिस्टोटल ने दिया है, वह यह कि जगत की गति और परिणाम के लिए एक स्वयंभू और अपरिणामी चेतन कारण आवश्यक है। ईश्वर सिद्ध स्वरूप या एक्चुअलाइज्ड फॉर्म है, वे समस्त जगत में अंतर्निहित है और सबके लक्ष्य है। समस्त जगत उनकी ओर आकर्षित होकर विकसित हो रही है। वे विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं। विश्व जड़ है, अतः जड़ता के अभाव और विशुद्ध चैतन्य के भाव के रूप में ईश्वर की सत्ता सिद्ध है। इसके अतिरिक्त प्लेटो, प्लोटाइनस और एरिजोना के तर्कों का आश्रय लेकर एक्विनस ने यह भी स्वीकार किया कि ईश्वर का विज्ञान नित्य सामान्य रूप है, जो सृष्टि का कारण और हमारे विज्ञानों का मौलिक रूप है। अतः हमारे विज्ञानों से ईश्वर के दिव्य और विज्ञान की सत्ता सिद्ध होती है, क्योंकि कार्य कारण की ओर संकेत करता है। अपूर्ण और अनित्य विश्व का अपने पूर्ण और नित्य कारण की ओर संकेत करना अनिवार्य है। एक्विनस ने एबेलार्ड के सामान्य विशिष्ट व्यक्तिवाद को अपनाया। विज्ञानों की असली सत्ता ईश्वर के नित्य विज्ञानों में है। ईश्वर के नित्य विज्ञान एक ओर तो जड़ पदार्थों के स्वरूप के रूप में उतरते हैं और दूसरी ओर हमारे विज्ञानों के रूप में। विज्ञानों के ये तीनों रूप ईश्वर, जीव और जगत के स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। इनके द्वारा ईश्वर जीव और जगत में अंतर्यामी है और अपने स्वरूप में पर है। संसार के समस्त व्यक्ति, चेतन जीव और जड़ पदार्थ दोनों इन सामान्य विज्ञानों से विशिष्ट होकर ही सत्तावान हैं। अतः इस मत को सामान्य विशिष्ट व्यक्तिवाद कहते हैं। एक्विनस के अनुसार आत्मा अमर है। हमारे जीवन का प्रधान लक्ष्य ईश्वर के नित्य विज्ञान और नित्य आनंद की अनुभूति है। ईश्वर का संकल्प सदा शिव और मंगलमय होता है, क्योंकि संकल्प ज्ञान का ही दूसरा रूप है। ज्ञान और संकल्प दोनों शक्ति रूप हैं। यह शक्ति स्वतंत्र होने में है, परतंत्र या अतंत्र होने में नहीं। जैसे जैसे हमारा ज्ञान ईश्वर अभिमुख होगा, वैसे वैसे ही हमारे संकल्प भी मंगलमय होंगे, क्योंकि ईश्वराभिमुख होना ही स्वतंत्र होना है। अगले दार्शनिक हैं मिस्टर एकहार्ट। सन 1260 से 1327 तक ये रहस्यवादी थे और प्लोटाइनस और एरिजेना के भक्त थे। इन्होंने एरिस्टोटल और एक्विनस की तीव्र आलोचना की। पृष्ठ संख्या 66। विश्व ईश्वर की अभिव्यक्ति मात्र है और जीव आत्मा का लक्ष्य रहस्यमयी साधन द्वारा ईश्वर में पूर्णतया विलीन हो जाना है। अगले दार्शनिक हैं डंस स्कॉटस। 1266 से 1308 स्कॉटस का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। वे ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे और कुछ समय तक वहीं अध्यापक भी रहे। वे फ्रेंचिस्कन शाखा के अनुयायी थे और संत एक्विनस के विरोधी थे। स्कॉटस ने तर्क और श्रुति के क्षेत्रों को अलग रखना ही उचित समझा। तर्क अतींद्रिय पदार्थों का कभी निश्चयात्मक ज्ञान नहीं कर सकता। ईश्वर की सत्ता के लिए जो प्रमाण एक्विनस ने दिए, वे निश्चयात्मक नहीं हैं। ईश्वर की सत्ता, आत्मा की अमरता, परम पिता की करुणा आदि सिद्धांत धर्म के सिद्धांत हैं और श्रुति के कारण मान्य हैं। फिर भी स्कॉटस ने स्वयं ईश्वर की सत्ता के लिए प्रमाण दिए। संत एंसेल्म के सत्तामूलक तर्क को उन्होंने मान्य समझा। ईश्वर के विचार मात्र से उनकी सत्ता सिद्ध होती है। यदि पूर्ण ईश्वर की सत्ता न हो तो पूर्ण ईश्वर का विचार एक साथ संभव और असंभव दोनों हो जाता है, जो असंगत है। अतः ईश्वर की सत्ता शून्यता असंगत है, अर्थात ईश्वर की सत्ता है। स्कॉटस के अनुसार एक्विनस का यह कथन कि ईश्वर का स्वरूप नित्य विज्ञानात्मक है और ये नित्य विज्ञान हमारे विज्ञानों और जड़ पदार्थों के वास्तविक धर्मों के मूल रूप हैं, अनुचित है। ईश्वर का स्वरूप उनकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति या संकल्प शक्ति या कृति शक्ति अर्थात विल आर वॉलिशन है। यदि ईश्वर अपने नित्य विज्ञानों के अनुरूप सृष्टि का निर्माण करते हों तो ये नित्य विज्ञान ईश्वर के आदर्श बनकर उनको परतंत्र बना देंगे। सामान्यों की सत्ता व्यक्तियों या विशेषों से भिन्न या श्रेष्ठ नहीं है। ईश्वर अपनी संकल्प शक्ति के व्यक्तियों को उनके सामान्यों के साथ उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक स्वरूप धर्म सामान्य रूप और व्यक्त रूप दोनों है। ईश्वर के विज्ञान में और हमारे विज्ञान में वह सामान्य है और विशेषों में व्यक्ति रूप है। विशेष सामान्य के संकुचित रूप या कंट्रैक्शन ऑफ एसेंस है। ईश्वर के समान जीव का स्वरूप भी उसकी संकल्प शक्ति है। हमारी स्वतंत्रता हमारे संकल्पों के कारण है। व्यक्ति धर्म के मार्ग को जानते हुए भी पाप के पथ पर चल सकता है, यही उसकी स्वतंत्रता है। हमारा ज्ञान भी संकल्पों के कारण बनता है, अतः हम अपने ज्ञान के लिए भी उतने ही उत्तरदायी हैं जितने अपने कर्मों के लिए। पृष्ठ संख्या 67। अगले दार्शनिक हैं विलियम ओकहम, 1290 से 1341। ओकहम अंग्रेज थे और ऑक्सफोर्ड के विद्यार्थी तथा अध्यापक रहे थे। ओकहम नामवाद और व्यक्तिवाद के समर्थक थे। उनके अनुसार दर्शन का क्षेत्र तर्क तक ही सीमित है। तर्क की गति अतींद्रिय विषयों तक नहीं है। अतः ईश्वर, आत्मा, अमरता, नित्य विज्ञान या सामान्य आदि को दर्शन के क्षेत्र से अलग कर देना चाहिए। जहाँ तक इंद्रिय अनुभव और तर्क की गति है, वहाँ तक ही दर्शन का क्षेत्र है। ईश्वर, नित्य, सामान्य आदि की सत्ता तर्क के प्रमाणों से सिद्ध नहीं हो सकती। सामान्यों की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, वे हमारी बुद्धि की कल्पना मात्र हैं। वे केवल नाम हैं जिनका प्रयोग हम सुविधा के लिए करते हैं। ओकहम का यह खंडन साहित्यिक भाषा में ओकहम का उस्तरा, ओकहम्स रेजर कहलाता है, जिससे उन्होंने सामान्य आदि अतींद्रिय पदार्थों की जड़ ही काट दी। ओकहम से पहले रोजर बेकन भी दर्शन को इंद्रिय अनुभव और तर्क तक ही सीमित रखने का और वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा दर्शन के विचारों को सिद्ध करने का समर्थन कर चुके थे। आधुनिक युग की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी। अध्याय 5 समाप्त।